हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात काफ़ी हो गई थी, मजबूरी में दोनों को एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रात बितानी पड़ी। कमरे का हीटर वर्क नहीं कर रहा था, इस कारण कमरा बिल्कुल ठंडा था। रूम को प्रॉपर फैसिलिटी ना होने के कारण काफ़ी दिनों से होटल मैनेजमेंट ने किसी के लिए भी बुक नहीं किया गया था, तो एक बेड के अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। दोनों बेड के दो कोनों पर सोए थे, पर आज जो हिल पॉइंट पर हुआ था, उस समय शुचि के होठों का स्वाद अर्जुन के होठों पर अभी भी था। उसके गले में शुचि के होठों को फिर से अपने होठों में लेने की प्यास जग रही थी। उसका गला सूख रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी शुचि इतने पास थी कि वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ना ही बिना शुचि की मर्जी के आगे बढ़ना चाहता था और ना ही अब पीछे हटना चाहता था। मजबूरी में वो तेजी से करवट बदलने लगा। शुचि के बदन से उठ रही भीनी भीनी खुशबू उसको बेचैन कर रही थी। यही हाल शुचि का भी था। तुम सोए नहीं अब तक? शुचि ने करवट बदलते हुए अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने इनकार में सर हिलाया। शायद नई जगह है इसलिए नींद नहीं आ रही, पर तुम भी तो अभी तक नहीं सोए, क्यों? अर्जुन ने धीरे से कहा। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही, पानी अब तक बरस रहा है, जाने कब तक बरसेगा, रुचि परेशान हो रही होगी, शुचि ने कहा। अभी शुचि आगे कुछ कहती, उसके पहले अर्जुन ने आगे बढ़कर झटके से शुचि को अपनी बाहों में खींच लिया। नहीं अर्जुन, ये गलत है अर्जुन, शुचि ने धीरे से एक हल्का सा प्रतिरोध जताते हुए कहा। कुछ गलत नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी कर लेंगे। अर्जुन ने अपनी मजबूत बाहों में शुचि को भर लिया। ये इतना आसान नहीं है अर्जुन, एक बार अगर हम आगे बढ़ गए तो फिर चाहकर भी अपने पैर पीछे नहीं खींच पाएंगे, शुचि बना कर रही थी, लेकिन अर्जुन बेखुद सा हो रहा था। आप चाहे जान रहे या जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर मर के जीने से अच्छा है कि हम दो पल ही जिए, लेकिन उन दो पलों को अपनी पूरी जिंदगी बनाकर जी लें। आई प्रॉमिस यू, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगी, मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा, हमारा प्यार सच्चा है और मंजिल हमें जरूर मिलेगी। अर्जुन ने अपना भरोसा शुचि को दिया। मुझे तुम पर भरोसा है अर्जुन, लेकिन ये, शुचि कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने अपने होठों से उसके होठ बंद कर दिए थे। शुचि के सारे शब्द उसके गले के अंदर ही रह गए। कुछ देर के बाद शुचि ने भी प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया। शुचि ने कस कर अर्जुन को पकड़ लिया। दोनों कपड़ों के बंधन से आज़ाद होकर एक हो चुके थे। कमरे के बाहर का माहौल ठंडा था, पर कमरे के अंदर दोनों की गर्म सांसें साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। इन दोनों को तो अच्छी नींद आ गई थी, लेकिन कुछ लोगों की नींद उड़ गई थी। एक नए रिश्ते की शुरुआत तो हो गई थी, पर क्या जलते अंगारों में प्यार का फूल खिल पाएगा? इधर प्रारब्ध जी और आदित्य जी दोनों अलग ही टेंशन में अपने अपने कमरे में चक्कर काट रहे थे। सम्राट और आंचल एक साथ उस कमरे में दाखिल हुए जहां के राजवीर सिंह चौहान उन लोगों का इंतजार कर रहा था। उसे एक होटल का कमरा बल्कि कॉन्फ्रेंस हॉल कहना ज्यादा उचित होगा, जिस कमरे को पूरी तरह से VIP सुइट जैसा मॉडर्न सुख सुविधाओं से युक्त बनाया गया था। कमरे के दरवाजे और दीवारें सफ़ेद और ग्रे रंग के थे और इन्हीं रंगों से मिलते जुलते पर्दे भी लगाए हुए थे। लाइट की भी प्रॉपर अरेंजमेंट थी, इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी जो कि आँखों को परेशान करे। कुल मिलाकर कमरे का माहौल दिल को सुकून दे रहा था। एक बड़े से सोफे पर राजवीर सिंह चौहान अपने एक साथी के साथ बैठा हुआ था और उसके सामने एक बड़ी सी सेंटर टेबल रखी हुई थी जिसके आजू बाजू दो सिंगल सोफे रखे हुए थे। सेंट्रल टेबल पर बिल्कुल ताज़ा सफ़ेद ट्यूलिप के फूलों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता रखा हुआ था। सम्राट और आंचल ने एक साथ राजवीर सिंह चौहान को ग्रीट किया। राजवीर सिंह चौहान धीमे से मुस्कुराया, लेकिन ना ही इन लोगों के स्वागत में खड़ा हुआ और ना ही इन लोगों को अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। उल्टा उसकी मुस्कुराहट जहर से बुझी हुई थी। आओ आओ, राणा के भेजे हुए बलि के बकरे और बकरी, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। तब कैसे हो राठौर और राणावत के भावी कर्णधार? राजवीर सिंह चौहान ने कहा। उसके कहने का ऐसा अंदाज था जो कि सम्राट और आंचल दोनों को चुभा, लेकिन दोनों ने बिना कोई रिएक्शन दिए हुए एक दूसरे की तरफ देखा और दो कदम आगे बढ़कर राजवीर सिंह चौहान के सामने खड़े हुए। राजवीर सिंह चौहान इन दोनों दोनों को देखकर ना खड़ा हुआ था और ना ही अपनी शान दिखाने में कोई कमी छोड़ी थी। वो अभी भी अपना दूसरा पैर मोड़कर अपने घुटने पर रखकर बैठा था। उसके अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जाने कहाँ का महाराजा बैठा हुआ हो, जबकि राठौर और राणावत के सामने उसकी औकात एक चींटी भर थी। ये बात दोनों ही जानते थे। ये चीज भी आंचल और सम्राट दोनों को चुभी थी। पापा ठीक ही कह रहे थे, ये चौहान एक नंबर का घटिया आदमी है, सम्राट अपने मन में सोच रहा था। वहीं आंचल गौर से राजवीर सिंह चौहान की हर एक हरकत नोटिस कर रही थी। पहले तो उसे ये लगा कि साथ बैठा हुआ आदमी ही राजवीर सिंह चौहान है, लेकिन जिस तरह से उसने राणा के भेजे हुए बलि के बकरे और बकरी जैसा टॉन्ट किया था कि प्रारब्ध जी की बात उसके दिमाग में घूमने लगी थी।